प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 54। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं, सुरसुरनरपतिवंद्यने प्रविनष्टघातिकर्मणे प्रणमन करोहु धर्मकर्ता तीर्थश्रीमहावीरने वरिशेषतीर्थंकरने सौ सिद्धशुद्धास्तित्वने मुनिज्ञानदृगचारित्रतपवीर्या चरणसंयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदुवळिहो मनुजक्षेत्रे वर्ततारहंतने अरिहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु पवित्र आश्रम पामिने
प्राप्ति
करूं साम्यने ये नाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 पर आ गए, पेज नंबर 67। यह हमने ये 27 नंबर की गाथा भी पढ़ी थी और अमृत चंद्राचार्य का जो टीका थी वो नेक्स्ट पेज पर पढ़ ली थी हमने, 68 पर। अभी यहाँ जो देखो, पहले ऊपर दो चार लाइन है वो गाथा के है, उसके बाद बीच में ये 27 आंकड़ा लिखा वहां तक 5-6 लाइन है, और उसके दो लाइन के बीच में जो मैटर है संस्कृत में वो पढ़ के मैं अभी अर्थ बताऊंगी। समझ में कहां से पढ़ना, ये सेंटर वाला जो पैराग्राफ है वहां से पढ़ते हैं। ये जयसेनाचार्य नाम के जो आचार्य हो गए उन्होंने इसी ग्रंथ पर टीका लिखी। टीका का अर्थ होता है स्पष्टीकरण, उसका भाष्य करते हैं, समझाते हैं हमको। गाथा में तो दो लाइन में सब विषय बताया है, अब इसको एक्सप्लेन करके एक्सपांड करके बताते हैं। यहाँ पढ़ते अभी हम, अथ ज्ञानम आत्मा भवती। देखो ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, आपने तो इतना तो मालूम है आपको, आत्मा जानने का कार्य कर रहा है हर समय, तो जानना 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 ये कार्य हो रहा है, तो कौन से गुण का वो कार्य है ताराबेन? जानना जानना गुण, ज्ञान गुण का कार्य, तो ज्ञान गुण है आत्मा में, तो खाली एक ही गुण है क्या दक्षाबेन? अनंत गुण है। तो ज्ञान की मुख्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा प्रकट लक्षण है, हमें कोई भी चीज पहचाननी है तो लक्षण के द्वारा उसकी पहचान होती है। अब हमें आत्मा को जानना है तो आत्मा में तो वर्ण नहीं है, आत्मा को कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंध वास सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं होती उसमें, उसकी कोई आवाज शब्द नहीं उसके अंदर, तो आत्मा को पहचाने कैसे? यानी इंद्रियों के द्वारा, जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके द्वारा जो हम पुद्गल की यानी मैटर को पहचानते हैं, हल्का भारी रूखा चिकना जो कुछ है, वो स्पर्श गुण की पर्याय है, वर्ण गुण की पर्याय होती है, रस गुण की, गंध गुण की, तो ये सारे पुद्गल के गुण है उसके पर्याय होती है। परंतु इनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा पुद्गल को पहचाना जाना जा सकता है, परंतु आत्मा को जानना है तो आत्मा में ये कोई गुण ही नहीं है, ये पर्याय भी नहीं है, तो उसको जाने कैसे? प्रश्न तो ये है, आत्मा है अरूपी और हमको उसको जानना है, हमको उसको जानने में हम स्वयं आत्मा ये भूल जाते हैं, हमको आत्मा को जानना ऐसा कहते हैं। आत्मा ये थर्ड पार्टी नहीं है, मैं आत्मा हूं और ये शरीर का भी संयोग हुआ है और मुझे मुझको ही अपने को ही पहचानना है, तो मेरा ऐसा कौन सा लक्षण है कि जिसके द्वारा हम अपने को पहचान सकते हैं? जैसे आपको कोई चीज दे दी आपको ऐसा बंद करके, आपको पहचानो इसका, तो स्मेल से हम पहचान सकते हैं ना अलग अलग। स्कूल में हमको ऐसा होता था, ऐसे कटोरी के ऊपर ऐसे कपड़ा बांध के हमको बोलते थे सूंघो इसको और पहचानो, किसी में लौंग रखे है, किसी में और क्या रखा है, तो स्मेल से हमको पहचानने को बोलते थे। अब यहाँ आत्मा को पहचानना है तो पहचाने कैसे? तो कहते कि जानना 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 हमारे ख्याल में, क्योंकि हम इसको जानो उसको जानो उसका जानो, ये तो जानना तो चल रहा है, तो जानना ये हमारा लक्षण है। तो ये जानने का कार्य मुझ में हो रहा है, वही मैं हूँ। बैठेगा श्रद्धा अभी शायद शायद लगता है ना, हाँ इसीलिए अभी कंफर्म नहीं लगता है, अभी शायद शायद लगता है। देखो वो लगेगा, परंतु वो तो क्या आपके क्या होता है, कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाती हो आप, यानी विचारों पे चढ़ जाती है, मगर अलग तरीके से विचार करते हैं, सही सीधा है, उसमें कोई इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, इतना कठिन नहीं है ये बात। देखो आत्मा का लक्षण क्या है, तो ज्ञान, तो जानना 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 चल रहा है, तो जहां जानना चल रहा है वही तो मैं हूं, ये बात चल रही है यहाँ पर। तो अभी हम आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं जितना ज्ञान, और दूसरी एक बात हमने सिद्धांत प्रवेशिका में भी सीखी थी, जितना बड़ा द्रव्य है उतना बड़ा उसका गुण है, उसके पर्याय भी उतने में ही होते हैं, तीनों का क्षेत्र एक ही है। तो यहाँ जो ज्ञान है वही आत्मा है, लक्षण के द्वारा हमने पहचाना, जो हमने इमली कही से तो हमने बोला खट्टी है, तो खट्टी है वही तो इमली है, मीठा यानी वो तो खारा जो है वही तो नमक है, ऐसे जो जान रहा है ज्ञान है वही तो आत्मा है, इसलिए ज्ञान को आत्मा कहो, आत्मा को ज्ञान कहो कह सकते हैं, क्योंकि उसका एक लक्षण है, उसके द्वारा हम चीज को पहचान सकते हैं। यहाँ क्या कहा, अथ पेज नंबर 67 जयसेन आचार्य की टीका चल रही है, ज्ञानम आत्मा भवति, यानी ज्ञान आत्मा है, आत्मा तो ज्ञानम सुखादिकम वा भवति, और आत्मा क्या है, ज्ञान है, आत्मा सुख है, विज्ञान गुण की अपेक्षा आत्मा को ज्ञान कहा, सुख गुण की अपेक्षा आत्मा को सुख कह, क्योंकि जैसे ज्ञान पूरे आत्म प्रदेशों में फैला है वैसे सुख गुण भी पूरे आत्मा में है। इति प्रतिपादित, अभी उसी का यहाँ कथन कर रहे हैं, नानम अपत्तिमदम ज्ञानम आत्मा भवति इति मतम सम्मतम, यानी ज्ञान ही आत्मा है ये जो मत है ये तो सब मान्य है भी, कस्मात ऐसा क्यों, उसको क्यों स्वीकार करते हैं? तो वट्टदि नाणम विना न अपाणम, यानी ज्ञान के बिना आत्मा नहीं पाया जाता, वो विद्यमान नहीं रहता। ज्ञानम कर्तृ, यानी वो वाक्य का कर्ता कौन है, तो ज्ञान, विना आत्मानम जीवम अन्यत्र घटपटादौ न वर्तते, आत्मा कहो या जीव कहो, जीव के बिना या आत्मा के बिना ज्ञान अन्यत्र, ये पेपर में है क्या, वस्त्र में है क्या, घटपट है, घट है ना वो घड़ा बर्तन, और पट है ना वस्त्र, उसमें तो नहीं पाया जाता, आत्मा के आधार से रहता है। तम्मा नाणम अप्पा, तस्मात् ज्ञायते कथंचित ज्ञानम आत्मा एव स्यात्। इसीलिए घटपट चाहिए, पटा पदा दो नहीं, पटा दो, घटपटा दो चाहिए। नहीं नहीं वो द द हुआ है, ट चाहिए, द हुआ गलती से हुआ है, घट पटा दो, ट चाहिए, टा घट पटा दो, दा के बदले टा चाहिए। यानी जीव जीव को छोड़कर अन्यत्र घट या पट में, वस्त्र में या बर्तन में वो नहीं पाया जाता। कौन? ज्ञान। तम्मान आनम अप्पा, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ये तो अभी प्रवचन सार ग्रंथ की शुरुआत है और बिल्कुल बेसिक से बात चलेगी। इसलिए कहते इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। तस्मात ज्ञायते, यानी इसलिए ये जाना जाता है, कथनचित यानी किसी अपेक्षा ज्ञानम आत्मा एव स्यात्, ज्ञान ही आत्मा है। वैसे ज्ञान एक गुण है और आत्मा में तो अनंत गुण है, परंतु इस अपेक्षा से ज्ञान आत्मा के बिना नहीं रहता है, इसलिए जो ज्ञान है वही तो आत्मा है। एक गुण के द्वारा पूरा आत्मा पहचान सकते हैं, और जहां ज्ञान है वहां उसके अनंत गुण तो है ही है, क्योंकि उनमें अविनाभावी संबंध है। जहां द्रव्य का एक गुण है वहां उसके अनंत गुण होते ही होते हैं। एक गुण को पहचान लिया तो उसके द्वारा हम पूरा आत्मा पहचान सकते हैं, इसलिए ज्ञान है वही आत्मा है, ये कहने यहां कह दिया। इति गाथा पाद त्रयण ज्ञानस्य कथंचित आत्मत्वं स्थापितम्। पादत्रयने तीन, ये चार पद का ये श्लोक होता है। ऊपर क्या बताया था? नानम उत्पत्ति मदम, यानी ज्ञानी आत्मा ऐसा माना जाता है। क्यों? वट्टदि नानम विनान अपनम, ये दूसरा पद हुआ, उसका दूसरा पाद हुआ, पाद यानी चरण हुआ। चार चरणों का ये श्लोक है, गाथा को यह श्लोक है चार चरणों की। तीसरा चरण क्या है? तम्मा नानम अप्पा, इसलिए ज्ञान ही अप्पा है। ये तीन चरणों में ज्ञान और आत्मा एक ही है, ये बात बताई। यही कहते हैं पादत्रय ने तीन चरणों के द्वारा ज्ञानस्य कथंचित आत्मत्वं स्थापितम्, यानी ज्ञान के किसी अपेक्षा ज्ञान ही आत्मा है, ये स्थापित कर दिया। अब कहते चौथा जो पाद है, चौथा चरण है, कौन सा है? अप्पा नानम व अन्नम वा, तो अप्पा यानी आत्मा, नानम यानी ज्ञानम, अप्पा नानम च अन्नम वा। आत्मा तो ज्ञान धर्म द्वारे न ज्ञानम भवती। अभी क्या कहते हैं? ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान में बता दिया, तो क्या आत्मा अकेला ज्ञान ही है? तो कहते ज्ञान की अपेक्षा आत्मा ज्ञान है, सुख की अपेक्षा आत्मा सुख है, वीर्य की अपेक्षा आत्मा वीर्य है। ये अभी कह रहे चौथे चरण में ये बात बता रहे यहाँ पर। तो कहते कि आत्मा तो ज्ञान धर्म के आधार से या ज्ञान धर्म की अपेक्षा ज्ञान है। सुख वीर्यादि धर्म द्वारेण अन्यत्वा नियमो नास्ति इति, सुख वीर्य आदि धर्मों की अपेक्षा से आत्मा अन्य भी है, भी है, ज्ञान है ज्ञान की अपेक्षा, तो आत्मा सुख है कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, तो वो अन्य भी है ना, अकेला ज्ञान ही है तो नहीं, अन्य भी है, यानी उसमें अन्य भी गुण है सब। तद यथा, वही इस प्रकार है। यदि पुनः एकांतेन ज्ञानम आत्मा इति भण्यते तदा ज्ञान गुण मात्र एव आत्मा प्राप्त। क्या कहते हैं? अगर हम एकांत से, एकांत कहते ना सर्वथा, सर्वथा ज्ञान इतना ही अगर आत्मा मानेंगे तो आत्मा में अन्य गुण नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, अकेला ज्ञान गुण ही आत्मा हो जाएगा। फिर से पढ़ते देखो, यानी अगर एकांत से ज्ञान ज्ञान ही आत्मा है ऐसा अगर हम मानेंगे तो ज्ञान गुण इतना ही आत्मा हो जाएगा। सुखादि धर्मानाम अवकाशो नास्ति, और सुखादि अन्य जो धर्म है, अन्य जो गुण है, उसके कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, कोई अवकाश ही नहीं रहेगा, उसका कोई स्थान ही नहीं रहेगा। तथा सुख वीर्यादि धर्म समूह अभावात आत्म अभाव, यदि हम कहेंगे ज्ञान ही एक गुण है वही इतना ही आत्मा है, तो उसमें ऐसा अगर मानते हैं तो वहां सुख नहीं, वीर्य नहीं, वो अनंत गुण नहीं, तो कहते अनंत गुण, अन्य अनंत गुण नहीं तो आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। समझ में? एक एक मान्यता में अगर कुछ चूक करते हैं तो कौन सी गलतियां होती है उसकी बात यहां हो रही है। आत्मना आधारभूतस्य अभावात आधेय भूतस्य ज्ञान गुणस्य अपि अभाव। देखो, हमने अकेले ज्ञान गुण ही आत्मा माना तो क्या दोष आया? अन्य उसमें गुण नहीं मानना पड़ेगा। अगर अन्य गुण का अभाव हो जाएगा, आत्मा का अभाव हो जाएगा। आगे चलकर क्या करें? अगर आत्मा का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान के आधार रूप आत्मा ही नहीं रहा, तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। अकेले ज्ञान में आत्मा में एक गुण है, एक गुण को आत्मा द्रव्य कहते हैं, उसको यहाँ नहीं कहा ना। सर्वथा अगर मानेंगे तो वो द्रव्य नहीं घटित होगा, द्रव्य बिल्कुल नहीं। एक गुण को द्रव्य नहीं कहते, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते। हमारी परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते। एक गुण एक द्रव्य नहीं हो सकता, तो फिर उसको गुण को कहा? बिल्कुल, एक परमाणु जो है एक प्रदेशी है, उसमें भी अनंत गुण, और आकाश जो अनंत प्रदेश है उसमें भी अनंत गुण, धर्म द्रव्य में अनंत गुण, अपने अपने हरेक के जुदे जुदे। ये तो बेस है ना। हाँ, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, क्रियावती शक्ति है और अनंत है। जैसे आत्मा भी हमने देखा ना, जैसे कर्ता कर्म वगैरह वो भी गुण है उसके, अन्य भी जो पर का कुछ नहीं करता ऐसा भी गुण उसमें है, सभी अनंत गुण है। साधारण तो है ही अनंत, विशेष भी उसके अपने अनंत होंगे। ये हमारे जितने इंद्रियों के द्वारा जाने जाते उसकी मुख्य चर्चा की है। उनका प्रश्न पुद्गल में और कौन से गुण होते होंगे? अचेतनपना वो उसमें नहीं है वाले भी गुण है।
जैसे देखो जैसे हम आत्मा को अरूपी कहते हैं, तो रूपी पुद्गल का लक्षण है, गुण है
आत्मा में। अरस नाम का गुण है
तो उसका रस है। इस तरह से जैसे जो ज्ञान गुण आत्मा का है, तो पुद्गल का अज्ञान गुण है,
दर्शन आत्मा का है तो अदर्शन है।
इस तरह से लेना, नहीं तो अनंत होंगे कैसे? धर्मास्तिका का क्या है? गति हेतुत्व, तो अगति हेतुत्व अपना जीव का और पुद्गल का दोनों का धर्म।
और उसमें भी अनंत इसलिए नहीं बताए जाते हैं क्योंकि वो कहने वाला भी नहीं रहेगा अनंत काल तक, सुनने वाला भी नहीं रहेगा। और हमारा प्रयोजन तो सॉल्व होता है ना, हमको तो उसको पहचानने के लिए जितना बस है तो बस है, और क्या है? हाल में आती है ना, उसमें उलझने के लिए तो है ही नहीं है। बस हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हमारा प्रयोजन वहां निकलना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, अगर एक गुण को इतना ही हमको द्रव्य समझेंगे हम, तो अन्य गुणों का अभाव होगा तो आत्मा का अभाव होगा। आगे क्या भी सुन लो फिर तर्क न्याय। अगर आत्मा का अभाव होगा तो ज्ञान किसके आधार से रहता है? तो आत्मा के। तो ज्ञान का आधार नष्ट हुआ तो ज्ञान भी नष्ट हुआ नहीं है ना? ये मान्यता में ये सब हो जाता है, यदि ऐसा मानेंगे तो की बात चल रही है। एक गुण का एक द्रव्य हो ही नहीं सकता। हाँ, तो कहते कि यानी ज्ञान गुण का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि आधार के आधार जो है आत्मा आधार है और ज्ञान उसका आधेय है, तो दोनों का ही नाश हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। इति एकांते सती द्वयोः अपि अभावः। ऐसे एकांत से ज्ञान एक गुण वाला इतना ही आत्मा अगर मानेंगे तो आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, दोनों का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा प्रसंग आएगा। ये मान्यता में क्या दोष होते हैं ये बात है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, पर आप मान रहे हैं तो आपकी मान्यता में दोष आ रहे हैं इस तरह से। तस्मात कथंचित, नहीं बहुत आसान है, क्योंकि अगर सिद्धांत प्रवेशिका नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि एक गुण वाला कोई द्रव्य नहीं हो सकता। ख्याल में है बात? तस्मात कथंचित ज्ञानम आत्मा न सर्वथा इति। क्या कहा? कथंचित की अपेक्षा, किसी अपेक्षा ज्ञान को आत्मा कहा। किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा या एक ही वो लक्षण की अपेक्षा ज्ञान को ही आत्मा कह दे, वो कह दिया, वो अपेक्षा वश कहा है, पर सर्वथा एक गुण इतना ही आत्मा नहीं है। तो कहते न सर्वथा इति, सर्वथा ने बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा आग्रह एकांत कर रखेंगे। कथनचित का ही अर्थ थे किसी अपेक्षा से, कथनचित यानी थोड़ा ऐसा अर्थ नहीं होता है, कथनचित यानी किसी अपेक्षा। अयम अत्र अभिप्राय, यहाँ ऐसा अभिप्राय है, आत्मा व्यापक ज्ञानम व्याप्यम, यानी आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है, व्याप्यनी जिसके द्वारा व्यापा जाता है, व्यापन समझते है फैलना, उसमें प्रसरना, तो द्रव्य है उसको व्यापक कहेंगे, और वो किसमें व्याप्य क्या है, उसके जो गुण है वो व्याप्य है। तत्व इसलिए ज्ञानम आत्मा स्यात्, ज्ञान आत्मा है, आत्मा तो ज्ञानम और आत्मा ज्ञान है। देखो क्या कहा, ज्ञानम आत्मा, ज्ञान है वो आत्मा है। अब कहते आत्मा है वो ज्ञान है और अन्य भी है। देखो ज्ञान को तो आत्मा कहा, पर आत्मा को ज्ञान भी है और अन्य भी ऐसा कहा, समझ में डिफरेंस। ज्ञान को तो आत्मा कह दिया तो आत्मा भी ज्ञान कह सकते हैं, पर अकेला ज्ञान आत्मा वो ज्ञान इतना ही है तो कह नहीं, वो अन्य भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, इस तरह से। तथा च उक्तम, इस तरह से वो बताया है, व्यापकम तत्तनिष्ठम, तत्तनिष्ठम व्याप्यम तन्निष्ठम एव च, यानी व्यापक है वो उसमें उसमें निष्ठ है ना, उसमें है, और व्याप्य है तन्निष्ठम एव। ये कहाँ से उन्होंने युक्त यानी कहाँ से उद्धरण दिया, उसका कोई रेफरेंस नहीं लिखा है। हाँ, यानी जब द्रव्य की बात है, जैसे यहाँ आत्मा को ज्ञान भी कहा, आत्मा को सुख भी कहा, पर ज्ञान को आत्मा कहा, इस तरह से द्रव्य और गुण में हम लगा सकते हैं। अभी ये तो हुई मूल टीका आचार्यों ने लिखी हुई, अब गुरुदेव इन दोनों टीकाओं के आधार से प्रवचन दे रहे हैं। वही है द्रव्य है, वो सभी गुणों में रहेंगे और गुण है वो एक द्रव्य में रहेगा, ये व्यापक है वो द्रव्य है। हाँ, वो तत् तद यानी उसमें भी है, उसमें भी है, ज्ञान में भी है, सुख में भी, इस तरह से, और व्याप्य यानी जो गुण है वो द्रव्य में है, ये उसका अर्थ है। क्योंकि के व्याप्य व्यापक ये सब ऐसी भाषा आती है ना, तो हमको थोड़ा टेंशन आता है। देखो अभी पेज नंबर 68 निकालना है आपको, ऊपर के लाइन के ऊपर का मैटर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, पेज नंबर 68 नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना, लाइन के नीचे वहां से पढ़ेंगे। अब आत्मा और ज्ञान के क्या कहते हैं, यह जो आत्मा है ना, आत्मा उसका ज्ञान स्वभाव है, जानना उसका स्वभाव है। वो कब से है बेटा, अनादि से है, और कब खत्म होगा वो कहते, इसलिए स्वभाव कब रहता है, अनादि से और अनंत काल तक कायम रहेगा। तो सिद्ध होने पर ज्ञान ना रुक जाएगा क्या, नहीं है, हमको ये नक्की करना है, क्योंकि हम आत्मा है तो हमारे पास क्या है और वो कितने का रहेगा, क्योंकि बाकी हिसाब लगाते हैं ना, कितना पैसा है, कितना क्या रहता है, हाँ उसका तो बराबर हिसाब किताब, और उसी की महत्ता भी आती है। और सबकी जड़ जो है ना पैसा है ना, फिर भी उसके पीछे लगते हम, यह तो हमारा क्या है, उसको जो हमारा वही है जो हमको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो ये हमारा स्वभाव है, हर एक द्रव्य का अपना स्वभाव होता है, पुद्गल का अपना है, हमारा अपना स्वभाव है। तो ये हमारा ज्ञान को यहाँ क्यों मुख्य कर रहे हैं, तो हमारा प्रकट लक्षण है, यानी अज्ञान अवस्था में अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तभी भी ये जानना चल रहा है, इसको किसी को पूछना नहीं पड़ता है। आपने कहा ये आप क्या बोल रहे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो कुछ नहीं समझ में आया ये किसको समझा? वही तो आत्मा है, ये जो सब चीजों समझने वाला जो है वही तो आत्मा है, ये कह रहे यहाँ पर। तो हमारा ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव अनादि से होता है, वो किसी के कारण उत्पन्न नहीं होता, वो नया उत्पन्न नहीं होता, और वो है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अभी तो हम मनुष्य है, यहाँ से छोड़कर देव में चले जाएंगे तो ज्ञान स्वभाव क्या होगा? यही रह जाएगा। आपका सारा धन संपत्ति बंगड़ी हार सब इधर रहने वाला है, शरीर तो छोड़ोगे, सोना तो लेके जाओगे कि? परंतु एक स्वभाव जो है, हम स्वभाव से एकमेक है, वो स्वभाव द्रव्य से कभी जुदा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, इस ज्ञान स्वभाव का आत्मा से एकत्व है, वो एकमेक है। आत्मा जुदा हो जावे और उसका स्वभाव जुदा हो जाएगा, ऐसा तीन काल में नहीं बन सकता। यह ज्ञान स्वभाव अपने सिवा दूसरे पदार्थ में यह ज्ञान नहीं होता। जीव पदार्थ में ही ज्ञान है, अन्य पदार्थों में है ही नहीं, न पुद्गल में है, न धर्म धर्म आकाश काल में। यह आत्मा जो है, आत्मा उसका ज्ञान स्वभाव है, यानी जानना जानना यह स्वभाव है। देखो एकदम मूलभूत बातें, कितनी सरल बातें यहाँ बता रहे, और वो स्वयं हिंदी में बोल रहे, तो सामने भी ऐसे कोई नए शिष्य आके बैठे होंगे हिंदी भाषिक, और वैसे भी ये तो प्रवचन सा तो मूल, ये तो ज्ञान का गेय कैसा है, ज्ञान क्या है, वो सब समझा रहे यहाँ पर। ये आत्मा क्या चीज है, क्योंकि हमें अपने को पहचानना है, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने अपने को नहीं पहचाना है, किसी अन्य चीज में मैंने मैं मान कर रखा हूं, तो इसलिए हम दुखी है। और हर एक जीव तो सुखी होना चाहते हैं, सारे प्रयत्न सुख के लिए चल रहे, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं होते, ये प्रश्न है ना। और अगर अभी हमने जैसा देखा कि आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा सुख भी है, तो आत्मा सुख है ने सुखमय है, तो ये सुख से लबालब बना हुआ, उसका स्वभाव ही सुखमय है, तो सुख स्वभाव होते हुए हम पर्याय में दुखी क्यों है, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि सुख है तो वो तो जैसे ज्ञान स्वभाव है तो जानने का कार्य हो रहा है, तो सुख स्वभाव है तो सुख भी तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, यानी कोई तो कारण होना चाहिए वहां पर, इस पर हमको गौर से सोचना है, है? अभी आगे बढ़ते देखो यह क्या कहा, यह जो आत्मा है उसका ज्ञान स्वभाव है, यानी जानना जानना यह स्वभाव है। तो कभी जानना रुकता होगा ना, नींद में और कोमा में ना? और जानना चल रही ना है वहां, आपको किसको जानेगा, बाह्य को जानेंगे तो ही जानना रहता है, वहां पर भी उसके राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, वहां पर भी जो कुछ वो ज्ञान भले हीन था। अगर आपके ये पेड़ पौधे किसको जानते होगे, ख्याल में है ना, उसके स्पर्शन इंद्रिय है, तो इंद्रिय के द्वारा वो स्पर्शन संबंधी ज्ञान है, वातावरण का जो कुछ वहां चल रहा है। अब इसके भी हीनता चल रही है, आप ये नहीं समझ पाए कि वो क्या जान रहा है, वो नहीं जान रहा, ये बात नहीं है। डॉक्टर भी जांचते वो कितना रिस्पांस देता है, उसके फिजिकल मोटर रिफ्लेक्सेस नहीं मिल रहे हैं, और वो क्या जानता है, वो बाहर उसका शरीर में कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है वो क्या जानता होगा। वहाँ भी सब चल रहे कार्य, उसके नहीं, नहीं, मन का भी कार्य तो चल ही रहा है वहाँ पर, वहाँ पर भी राग द्वेष होते होंगे, वहाँ पर भी कर्म का बंध चल रहा है ना हर समय, क्या छूट गया, क्या ज्ञान गुण का कार्य रुक गया? नींद में आप जानते हो क्या, नहीं जानते, क्या जानते, बाद में याद नहीं आ रहा है आपको, वहाँ सब चल रहा है, क्योंकि नहीं तो उसको ब्रेन डेड कहते, साइंस की भाषा में भी क्या कहते हैं, ब्रेन का कार्य चल रहा है करते नहीं, यानी कुछ उसके रिफ्लेक्सेस भी चल रहे कि नहीं वहां पर। तो हमें तो दुनिया का कुछ जान लिया, बाहर में कुछ किया तो हमने जाना, ऐसा लगता है। जानने का कार्य तो वो जीव के क्षेत्र में हो रहा है वहां पर।
ये साइंस ऐसा मानता है कि आदमी मर जाता है, उसके बाद में भी उसका ब्रेन थोड़े टाइम, तो ये गलत बात है।
अरे वो तो जीता है तभी भी नहीं वर्क करता है।
क्या कह रहे हो?
अरविंद भाई कहते हैं कि साइंस का ऐसा कहना है कि आदमी मर जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसका ब्रेन काम करता रहता है, उसका बाद भी तो मैंने बोला जीते जी भी वो काम नहीं करता। किसको जाना? मैं कौन हूँ जाना नहीं, वो जानना श्रद्धा दोनों ही चल रहा है। अभी आपको किसी ने पूछा आप कौन हो तो पहले में पहले क्या अपने नजर के सामने ये हुलिया सब इसी को मैं मान के रखा है, खाली माना नहीं जाना भी उसी को, तो यही मैं हूँ ऐसा माना भी और जाना भी दोनों ही हो रहा है। किसमें? अरे आत्मा को उसको पता ही नहीं आत्मा नाम से, कोई आत्मा की बात बताए तो भी चीड़ आती है उसको, आत्मा आत्मा करते हो दिन भर ऐसा।
अनादि से इस जीव ने एक ही बात नहीं की है इसके लिए उसे मोक्ष नहीं हो रहा है। जानना जानना तो चल रहा है और मैं जानती हूँ मैं जानता हूँ ऐसा भी नक्की कर रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका निश्चय नहीं है। यानी मैं जानता हूँ यानी मैं दिनेश हूँ मैं जानता हूँ, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं बूढ़ा हूँ,
यानी मैं करता मैं का एहसास है उसको, मुझे रोना आया मुझे भूख लगी मुझे दुख हुआ मुझे ये मैं कर रहा हूँ, पर मैं कौन हूँ तो देखता यहाँ के ये शरीर यही मैं हूँ।
यानी अनादिकाल से इस जीव ने अपने स्वरूप को जाना नहीं पहचाना नहीं कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं आत्मा हूँ और ज्ञान स्वभाव ही हूँ, ये बात ही उसके पल्ले नहीं पड़ी अभी तक और सुनकर भी नहीं सुनी जैसा किया। कब से? आज नहीं इस भाव में नहीं।
अरे हर भाव में यही किया उसने। क्योंकि जैसे दुनिया को जानने वाला और अपने अपने बारे में बेखबर है पूरे, और इसको जानो उसको जानो उसको जानो, और ये भी ये पूरा इसको मिला के मैं मानता हूँ और उसी को मैं जान भी रहा है, अकेले मान रही नहीं जान भी रहे इसे, क्योंकि उसका ज्ञान भी खोटा हो रहा है, सही नहीं जाना है उसने। क्या कहते हैं ये जानना जानना स्वभाव है, पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति का भाव वह कोई उसका स्वभाव नहीं है। देखो क्या कहते हैं स्वभाव, उसको कहते स्वभाव अपना भाव। तो हमने क्या देखा स्वभाव तो अनादि अनंत रहता है कायम रहता है, तो हमें क्रोध आया कभी लोभ हुआ कभी रोना आया, तो अगर उसको स्वभाव मानेंगे तो कायम रहना चाहिए। अरे ये राग द्वेष के परिणाम भी तो मिनट मिनट में पलटते हैं है ना, और अगर वो स्वभाव होता तो सिद्ध में भी होना चाहिए था, तो फिर सिद्ध दशा ही नहीं होती। राग ही अगर स्वभाव है तो आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो राग करे, तो राग है हमने अपने अज्ञान से बाहर में खड़ा कर दिया है। देखो जानना पर्याय में हो रहा है वो तो स्वभाव का अंश है, पर राग भी पर्याय में हो रहा है, क्या वो स्वभाव का अंश है? नहीं, वो विभाव है, उसको विभाव का विपरीत भाव का, कल मैंने बताया था ना वो लोहा है और उसमें जंग पकड़ जाता है ऊपर से, तो क्या लोहे का अंग है वो? तो बाहरी वो मॉइस्चर के साथ वो कांटेक्ट में आकर वो हो गया, जैसे कोई चांदी की वस्तु है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है ना उसकी तो काली पड़ जाती है, वो क्या हम काली चांदी कहेंगे उसको? वो चांदी नहीं है, उसका वो विपरीत भाव हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का स्वभाव क्या है जानना, तो पर्याय में जानना भी चल रहा है वो तो स्वभाव का अंश कह भी सकते हम इसको, परंतु उसी समय वहां राग द्वेष ये पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं सब, तो क्या वो स्वभाव है? तो कहते वो स्वभाव नहीं, इसको विभाव विपरीत भाव कहा। देखो यही कह रहे, देखो पुण्य पाप और अभी तक भूल क्या हुई है, धर्म के नाम पर केवल पुण्य की कुछ क्रियाएं करना चाहता है, परिणामों का तो पता भी नहीं है कि शुभ परिणाम, केवल हमने यहां से वहां पैसे दिया, हमने दान दिया, हमने बहुत धर्म किया, ऐसा मान लेता है। दया दान व्रत भक्ति का भाव वह कोई उसका स्वभाव नहीं है, वह तो विकार है, विभाव है। विभाव समझते हैं, स्वभाव अपना भाव, विभाव यानी विपरीत भाव, स्वभाव से विरुद्ध भाव। इसलिए जिसको आत्मा का धर्म करना हो उसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा निर्णय करके, ये निर्णय करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना बोझ उठाना है, कितना ये क्या इसमें क्या आसानी आसानी, बस मैं ज्ञान स्वभावी हूँ वो इतना नक्की करना है अपने से, क्योंकि ये बाकी जो काला गोला है तो पुद्गल के गुण वर्ण है, उसके जो है उसके पर्याय है, और जानना ये मेरा कार्य है, वो मेरा स्वभाव है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा निर्णय करके आगे क्या करना, निर्णय कर लिया, मनीषा बेन कहते ज्ञान में एकाग्रता करनी है। ये जो ज्ञान हमारा जानने का कार्य हो रहा है, इधर इधर इसको जानो उसको जानो उसको जानो उसको चल रहा है, पहले में पहले हम अपने बुद्धि से, पहले हम जब आगम पढ़ते हैं तत्व ज्ञान सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, हमें सही निर्णय तक पहुंचना है। ये पहले जो जानना हो रहा है वो हमने शास्त्र में से जाना, सुनकर जाना, शब्दों में जाना, अभी ये जो हमने जाना है वो हमें अंदर ले जाने के लिए, यानी ये तो इंडिकेशन है। जैसे हमने आपको बताया चांद वहां है, तो आप उंगली को देखते रहेंगे तो चांद दिखेगा आपको, उंगली जिस दिशा की ओर आपको संकेत कर रही वहां आपको देखना है। ऐसे यहाँ जो सभी बातें हो रही है वो हमें अपने स्वभाव की बातें हो रही है, तो हमें अंदर एकाग्र होकर स्वभाव पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अपने जो जानना चल रहा है, जानना तो हर समय चल रहा है, हर समय जानना जानना जानना, वो कभी कभी रुकने वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो तो द्रव्य तो गुण है ना, तो हर समय उसका परिणाम चलेगा ही चलेगा। तो जानना जानना हो रहा है, उसके लिए हमको कुछ मेहनत नहीं करनी, तो हमारा स्वभाव ही जानने का, तो जो हो ही रहा है, तो अभी क्या करना है, ये हमें अपने को ही जानना है। और वो सारे स्वभाव में ऐसी अनंत शक्तियां हैं कि जो अपना सब कुछ करे, परंतु हमने उसको दबा के रखा है, क्यों, हमारे उल्टी मान्यता के कारण। यानी स्वभाव में जाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, ये हमने जो उल्टा सारा मान के रखा है ना, अपने अपने कोई रोक के कुछ अन्य अन्य चीजें मान के रखी कि इसमें धर्म होगा, ये करेंगे तो ये होगा, तो वो तो मान्यता छूट जाएगी, कैसे सही ज्ञान होगा। तो और ज्ञान को अपने स्वभाव में एकाग्र करना है, एक करना भी कहने की बात है, वैसे तो वो उसको एकाग्र होते हुए पर्याय उत्पन्न हो जाएगी अपने आप, फिर भी भाषा में तो ऐसा होगा कि उसमें एकाग्र करो, क्योंकि वो उपदेश की भाषा होती है इसे। तो कहते ऐसा निर्णय करके ज्ञान में एकाग्रता करनी, ऐसी बात है, समझ में आया। आत्मा और ज्ञान ऐसा कहा, तो ज्ञान यानी जानना जानना स्वभाव है एक पंक्ति 27 गाथा के ऊपर है, यह आत्मा जो है वह देह से भिन्न है, आत्मा और उसका जानना स्वभाव ज्ञान है। यानी जैसे देह से आत्मा भिन्न है, वैसे ज्ञान से आत्मा भिन्न है क्या, नहीं है, भिन्न है ने जुदा है क्या, ज्ञान जुदा और आत्मा जुदा, ऐसा नहीं है। इस आत्मा, हाँ, नित्य तादात्म्य सुमति, यहाँ वो शब्द आया एकत्व है, आत्मा का ज्ञान के साथ एकत्व है, यानी कि यह ज्ञान और आत्मा एक रूप है, जिसको हम तादात्म्य कहते हैं, एकमेक है, एक रूप है, उसको उससे कोई जुदा तीन काल में उसको जुदा नहीं कर सकता। जैसे उष्णता और अग्नि एक रूप है, ऐसे ज्ञान स्वभाव और आत्मा एक रूप है। अब अन्यत्व का विचार करते हैं, अर्थात यह ज्ञान स्वभाव अपना अपने से है, और यह ज्ञान स्वभाव अनेरे आत्मा में और अनेरे अन्य घटपटादि में जड़ में है नहीं। क्या कहते हैं, मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो मेरे में है, मेरा ज्ञान स्वभाव आत्मे नहीं है, यानी दूसरे आत्मा में मेरा स्वभाव नहीं है, उसका उसके पास है। और कहते कि अनेरे घट, अनेरे ने अन्य दूसरे जो घटपट वगैरह जो अन्य पदार्थ है उसमें भी मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं है, वो तो जड़ है और मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूँ। न्याय से यानी लॉजिक से बात करते हैं, किंतु जगत को कहाँ फुर्सत है ना, क्योंकि हमने जो रूटीन बना लिया है खाने पीने का और इसका, इसके लिए हमको समय ही नहीं निकाल पाते। क्योंकि सबसे जिसको कहेंगे ये जन्म मरण और जो समा हमारे सारे जो दुख चल रहे हैं उसका इलाज है इसमें, हर एक अपने कल्याण की बात है, परंतु फिर भी इसके लिए उसको उसकी इम्पोर्टेंस ही कभी लगी नहीं और कभी ऐसा विचार भी नहीं आता कि नहीं ये तो सुपरमोस्ट चीज़ है मेरे जीवन की, परंतु उसके लिए उसको समय नहीं है। ये विचार तो करो नहीं, जिसको हम मोक्ष सर्वोत्कृष्ट चीज है उसके लिए हमने कितना समय आज तक के जिंदगी का दिया है, और एक डिग्री और फिर बाद में नौकरी के लिए जो हमारे इस एक भव के लिए कुछ कार्यकारी, कुछ कार्यकारी कहते हैं, सर्वथा कार्यकारी नहीं कहा है, तो उसके लिए हमने बचपन में हमको तो पता ही नहीं था ना, हमारे माँ बाप ने हमको स्कूल में डाला, फिर उसको पढ़ाया, वहाँ स्कूल के छः छः घंटे आठ आठ घंटे जितना है, फिर उसके होमवर्क कितना किया, उसकी परीक्षाएं के लिए कितना रटा, क्या क्या किया, सब याद कुछ किया और वहाँ जाके परीक्षा में लिख दिया है ना, तो इतना सब मिलकर हमको कोई डिग्री मिली, डिग्री मिली तो फिर हमने व्यवसाय कुछ जो कुछ नौकरी जो कुछ वो किया, तो उसके बाद इसके लिए कहाँ समय मिला हमको, ये विचार करने की बात है। अभी जिसको समय भी मिला, अभी सब कुछ हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, या हमको महिला में थोड़ी फुर्सत, भली काम से थोड़ी तो फुर्सत मिलती होगी, तो इसके लिए कितना समय दे पाते क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं लगी, अगर लगे तो समय मिल जाते। कि नौकरी करने वाले को घर का काम करके नहीं जाती है, हमने भी मेडिकल प्रैक्टिस किए तो घर का सब निपटा के जाते थे ना, यानी वहां इतना समय निकालना है तो घर के काम हम उस एडजस्ट करते हैं, तो अगर हमको इसमें कुछ समय निकालना है तो हम बाकी काम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्रिकेट मैच और टीवी सीरियल के लिए कैसा समय मिलता है हमको, बाकी बराबर मिलता है हम नहीं ताराबेन तो है, बहुत है उनको शौक है, बहुत है पहले से उनको नहीं वो सब उनको पता होता है किसका कितना क्या स्कोर है वो जैसे नाचार्य ने कहा पूछेगी तो नहीं पता है जगत को कहाँ फुर्सत है, जिसमें इंटरेस्ट होती जिसमें रुचि होती उसके लिए समय अपने आप निकाल देता है जी। यह देह जो है यह तो मिट्टी जड़ है और इसी के लिए सारे कुछ कोशिश हो रही है, यह आत्मा से भिन्न है, अंदर द्रव्य कर्म है वह भी भिन्न है, वो तो कर्म दिखता नहीं पर हमने सुन के रखा है कर्म है, उस तकलीफ देता है ना, तो मदद भी करता है और अंदर पुण्य पाप के विकार भाव होते हैं वह भी भिन्न है, देखो उसमें भी भिन्नता का है तो अपने पर्याय में, पर वो हमारा स्वभाव नहीं है। देखो यहाँ मैं किसमें स्थापित करना है, स्वभाव में मैं हूँ, तो स्वभाव कब से कब तक है, अनादि अनंत, तो मैं कब से कब तक रहूंगा, अनादि अनंत, तो मेरा मरण कब होगा, तो रोते क्यों हो तो कौन मरता है, जीव मरता है कि शरीर मरता है, वो जिंदा कब था शरीर जिंदा कब था, अरे जीव के कारण उसको जिंदा कहते हैं, जीव इसमें से शरीर में से जीव निकल जाएंगे तो कहेंगे बॉडी हटाओ जल्दी, होता है ना, तो अभी जब वहां बॉडी में और शरीर दोनों शरीर और जीव इकट्ठा रह रहे हैं तब भी ये बॉडी ही अलग ही है, वो तो मुर्दा ही है उसमें कोई जान नहीं है, जानने का कार्य वहीं पर रहने वाला जीव कर रहा है, ये ऐसे तो सोच रहे ना मैं कौन हूं इसमें, क्योंकि वो सुपर इम्पोज एक ही जगह सब रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यही मैं हो गया हूं, यही तो भूल है, अनादि से यही चल रही है। जिस भव में गया है, जो देह धारण किया है, उस रूप अपने को मान के बैठा है, उसमें विचार करने पर वो ख्याल में नहीं आते, वो बात नहीं है, बिल्कुल ख्याल में आ जाती बात। देखो आगे आप कुछ बोल रहे।
मैं ये कह रहा था कि हम जिंदा है तभी ये शरीर से जुदा हूँ ये भी मानते नहीं, मरने के बाद भी कुछ लोग नहीं मानते कि ये जिंदा है क्या नहीं। देखो इंग्लैंड में क्या हुआ था, हम गए थे जब लंदन में, तो वहाँ डेड बॉडी पार्लर्स होते क्योंकि मरने के बाद 6-6 दिन 8-8 दिन 10-10 दिन उसको आगे का जो कुछ सोपस्कार होता है वो करने को जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ तो सबको गाड़ते हैं ना नीचे, तो जगह तो चाहिए। तो वो बॉडी क्या करे, उसको पार्लर में मतलब उसको सजाते हैं, और हाँ वो तो हम कहेंगे मुर्दे को सजाते हैं, और ये शादी में इसमें इसमें किसको सजाते हैं,
मुर्दे को।
एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को सुधारता है। नहीं समझे? देखो आपको मालूम नहीं है शायद, मेरी बेटी का भी बिजनेस पार्लर ही चलाती हो, वो भी जब ये बात सुनती है तो ऐसा कहती है एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को सुधार रहे।
वो तो कहती है, मैं जब जाती हूँ इसे ब्राइड वगैरह करने के लिए, उसका अभ्यास है ना बहुत, कहती है ऐसा लगता है कि एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को सजा रहा है। चलो चलो क्या कहते हैं यहाँ पर, 69 पेज पर पढ़ रहे थे हम, नया पैराग्राफ है ना, वहाँ दूसरी लाइन, वहाँ ये हमने पढ़ा कि पुण्य पाप के विकारी भाव वो भी भिन्न है, वह कोई आत्मा की चीज नहीं है, चीज नहीं है, न उसके गुण है और न ही उसके स्वभाव पर्याय है। यह आत्मा जो है वह ज्ञान स्वभाव है, यानी ज्ञान स्वभाव को ही आत्मा यानी मैं कहना। तो स्वभाव ज्ञान स्वभाव में राग है क्या? स्वभाव में नहीं है, पर्याय में उत्पन्न हुआ है, वो क्षणिक है, विकार है। जानन स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, उसका आत्मा से एकत्व है, यानी आत्मा से उसका ज्ञान स्वभाव कभी जुदा नहीं हो सकता। और यह ज्ञान स्वभाव है उसका पर आत्मा में, पर आत्मा ने अन्य आत्मा, और पर जड़ में यानी अन्य पर पदार्थों में, जड़ में, जड़ कितने द्रव्य है? हाँ पर उसके नाम बताओ ना, जाति अपेक्षा जड़ द्रव्य कौन सा है? हाँ और काल, नहीं तो जड़ कहने से अकेला पुद्गल नहीं, वो सभी। हाँ पर हम मुख्यतः इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, उसी में खास एकत्व हो रहा है, इसलिए पुद्गल का नाम लेते हैं ज्यादा करके। तो क्या कहते हैं, ये जो मेरा ज्ञान स्वभाव है उसका अन्य आत्मा में और अन्य सारे जड़ पदार्थों में अभाव है, अन्यत्व यानी अन्य में। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लॉजिक से बात करते हैं और न्याय से सिद्ध करते हैं, बात करेंगे भी और उसको सिद्ध भी प्रूव भी करेंगे। श्रोता हमें न्याय आना चाहिए ना, न्याय का अर्थ होता है लॉजिक। ये पूरे न्याय शास्त्र जैनिज्म में बहुत सारे न्याय शास्त्र है, जैसे सर्वज्ञ है कि नहीं है, मोक्ष का मार्ग क्या हो सकता है, ये बहुत सारे सारे न्याय से बातें सिद्ध की है पूरी। कौन सा ने अन्य में नहीं, वो नहीं नहीं छपा बराबर, और उसके नीचे करते हैं मेरे र भी जरा स्पष्ट है, बस इतना ही है, दो ही शब्द बराबर नहीं छपे हैं। अब नीचे पूज्य गुरुदेव श्री, यह न्याय सादी भाषा में तो कहने में आता है, हीरा और हीरा का प्रकाश दोनों का एकत्व है, प्रकाश का हीरा के साथ एकत्व है, परंतु इस प्रकाश का दूसरा हीरा और दूसरे लकड़े के साथ एकत्व नहीं है। यही वस्तु है जिसको कल्याण करना हो, किसका? समाज का। तो पर का कोई कर ही नहीं सकता है। आत्मा को यानी स्वयं सुखी होना चाहता है, आत्मा को सुखी करना हो और जन्म मरण से रहित होना हो, उसे आत्मा और जानन स्वभाव दोनों एक है ऐसा निर्णय करना होगा। अभी कितना आसान निर्णय है, इसके लिए क्या वापड़ बेलने है, क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान और मैं तो एक में हूँ, उससे मैं कभी जुदा नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि जानना कार्य तो हर समय चल रहा है और हमें ये नक्की करना है वो जानना कार्य वो मेरा है, वो ब्रेन का नहीं है, ख्याल में ही ना बात। इस ज्ञान स्वभाव में एकत्व होना वही आत्मा में एकत्व होना है। देखो इसको कहते हैं, यानी एक छोटे छोटे सिंपल वाक्यों में न्याय बता रहे हैं, न्याय गणित में कैसे स्टेप बाय स्टेप हम वो सॉल्व करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक वाक्य बोलकर उसके एक एक न्याय से लॉजिक से बताकर वो बात सिद्ध कर रहे हैं। बाकी दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव विकार है, देखो वो आते नहीं, वो बात नहीं, ऐसा भी नहीं कहना मत करो, कहीं लिखा है कि दान मत दो, दया मत करो, हिंसा झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ कहा है? ये भाव आते हैं परंतु वो राग भाव है, वो विकार है, वो मैं नहीं हूँ, पहले ये नक्की करना है। और सारी दुनिया किसका उपदेश देती है, अरे पहले तो क्रोध आदि कम करो, राग कम करो और कर्मों को निकाल बाहर करो। कैसे करो, पर उसके प्रोसेस क्या है, कैसे सोचना है, कौन से पद्धति से? बहुत आसान बात है, ये राग है, वो विकार है, मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरे से जुदे है, पहले में पहले ये नक्की करो। कोई क्रोध करने वाला वो कोई उसको उपदेश देता है, पहले क्रोध कमी करो, पहले अमुक कमी करो, मेरे पहले बहुत करो, अच्छा बहुत करो क्यों, हाँ पर एक बात खेलना, ये जुदा है पहले ये नक्की करो, जितना होना है वो अपने वो तो ज्यादा होगा भी नहीं, पहले
कम करो ज्यादा करो
ये तो कहने के लिए, कहने के लिए कि वो कम करने का उपदेश है, मैं होने दो जितने होने दो, पहले में पहले क्या करना है, ये जुदे है ये पहले नक्की करो, ये जुदाई नक्की किए तो ऐसे क्रोधादि वो अनंताबंदी होने वाले वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। और वो क्रोध कम करना चाहता है या राग द्वेष कम करना चाहता है, वो किसका लक्ष्य करके करता है, राग का, राग का लक्ष्य करते करते राग कम नहीं होने वाला है, पहले उसकी जुदाई नक्की करो, जुदाई नक्की करके ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हो जाओ, वो राग उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो उसको कहेंगे उसको नष्ट कर दिया। ये इतना सिंपल सरल मार्ग है, परंतु सब उसको इतना कठिन बना के, नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए, वो अंगीकार, वो होगी सब, क्योंकि जिस भूमिका में जैसा है वहां उस पद्धति के राग द्वेष के परिणाम होंगे। अभी आप जिसको कहेंगे कि शुभ भाव की अधिकता है और बाकी दुनिया में इतने अशुभ भावों की, तीव्र पापों की, ये सब अतिरेकी और जो है चल रहा है, तो आपको किसी ने सिखाया इसलिए हो रहा है क्या? वो सहज रूप से वो ऐसी आपकी भूमिका भी चल रही है, अभी आपकी इसकी रुचि हो रही है, तो ऐसे रुचि वाले जीवों को ऐसे तीव्र पाप के परिणाम भी नहीं आएंगे, वो मुझे नहीं करना करके नहीं हो रहे, और किसी को नहीं करो करने से वो रुकेंगे ऐसा भी नहीं है। पहले में पहले इससे जो भिन्नता है हमारी, ये जुदे है मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं कितना हूँ ये स्वभाव इतना मैं हूँ, और हमने अपने को देखो, पर्याय तो बिल्कुल क्षणिक है और पर्याय बिल्कुल एक अंश है और स्वभाव पूरा का पूरा है, और हमने अपने को अंश जितना माना है और पूरे स्वभाव को भूल गए। जैसे बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन होगा, उसके ऊपर लहरें उठती है, तो लहर जितना समुद्र है और उसकी डेप्थ कितनी अंदर, पूरा का पूरा, ऐसे हमारा स्वभाव पूरा का पूरा अंदर पड़ा है, प्रत्येक पर्याय के पीछे पूरा स्वभाव पड़ा है, मुझे स्वभाव का कभी गौर किया नहीं हमने। स्वभाव में इतनी सामर्थ्य है कि अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलता रहे, और हमने अपने को अरे मैं कुछ नहीं जानता सब भूल जाता हूँ इतना सामान लिया है। पर्याय में ही नक्की करना है, पर नक्की किसको करना है, स्वभाव की सामर्थ्य को नक्की करना है, क्योंकि स्वभाव ही मैं हूं, तो मुझे अपने ये तो परिपूर्ण होता है, लिमिटलेस होता है, उसको नक्की करना है अपने ज्ञान में, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक होने वाला है। रुकते हैं, अपना विषय यहीं समाप्त करते हैं। रह गया क्या वो?
नहीं, नहीं, रीडिंग तो अब गाथा,
हाँ अब गाथा कहते हैं, यह तो ऊपर की पंक्ति का अर्थ किया,
रीडिंग का अर्थ।
यह तो भगवान की वाणी बापू, बहुत सूक्ष्म है भाई। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ से कल पढ़ेंगे। छावाणी के ज्ञान तय सूझे लो खालो, सो वाणी मस्तकन सदा देत हो।